गोलोक एक्सप्रेस के स्पिरिचुअल गपशप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल।
हरी हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शास्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे और न किसी युक्ति पे, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होके नित्या आनंद पाइए। घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, हरी हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरी हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के सरल भागवत गीता सार रूपी सत्संग में आप सभी का स्वागत है। और जो डिवोटीज हमें यूट्यूब के माध्यम से और पॉडकास्टिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी की जानकारी में है कि सिंप्लीफाइड भागवत गीता सार रूपी कोर्स की हमने एक शुरुआत की है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को सीता नवमी और मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ में हम गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी को मैं भी आज उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उन्हीं के प्रयत्नों से और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम इस सरल भागवत गीता कोर्स का अध्ययन कर पा रहे हैं। तो अभी तक हम इस कोर्स के माध्यम से ये समझ चुके हैं कि अध्यात्म को लेके हमारे मन में जो मिथ थे, जो डोट थे, उसको हमने दूर करने की कोशिश की। भागवत गीता की क्या विशेषताएं, भागवत गीता हमें क्या सिखाती है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। बड़े सारे मॉडल हम कर चुके हैं, ABCD मॉडल, कंप्लीट हेल्थ इज इक्वल टू कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल, 4S के ऊपर चर्चा हो चुकी है। और उसके माध्यम से हमारे मन में जो बड़े सारे डाउट थे उनको हम दूर कर चुके हैं और एक नई ऊर्जा के साथ हम भागवत गीता के सार रूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझ चुके हैं कि भागवत गीता को हमें कैसे समझना चाहिए। जब तक हम उस परम पिता परमेश्वर की शरण में नहीं जाएंगे, विनम्रता के भाव से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम भागवत गीता के इस दिव्य ज्ञान को हम नहीं समझ पाएंगे। निधि जी के माध्यम से अब हम समझ चुके हैं, जो हम चैप्टर 1 के जो सार के ऊपर चर्चा हो चुकी है कि शोकाग्रस्त अर्जुन कैसे अर्जुन उस परिस्थिति में फंस गया था। बड़े जोश के साथ पांडवों ने और अर्जुन ने पूरे जीवन उस कुरुक्षेत्र को लड़ने की तैयारी की थी, पर जब अर्जुन को जानबूझ के माया में डाला गया और शायद हमारे जैसे लोगों को एक मैसेज दिया जाना था क्योंकि अर्जुन हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तो अर्जुन को जानबूझ के माया में डाला गया। जब माया का अटैक अर्जुन के ऊपर होता है तो अर्जुन, वही अर्जुन जो बड़े जोश के साथ अपने कुरुक्षेत्र को लड़ने के लिए जाता है, पर कंफ्यूज हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और वही अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र साइड में रखते हुए ये बोलना शुरू कर देता है कि भाई मैं तो इस कुरुक्षेत्र को नहीं लड़ पाऊंगा, इससे अगर मुझे निहत्ते को पांडवों को मार भी दें तो मुझे कोई दुख नहीं होने वाला। अगर हम अपनी लाइफ को अर्जुन के साथ रिलेट करके देखें तो हम भी इन्हीं परिस्थितियों में फंसते हैं। बड़े जोश के साथ हम भी अपने कुरुक्षेत्र में कूदते हैं और जब हर रोज माया हमारे ऊपर अटैक करती है और जीवन की परिस्थितियों के साथ हमें जूझना पड़ता है तो हम भी फंसते हैं और एक जीवन को एक धक्के की तरह जीने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि इन परिस्थितियों से कैसे निकलें। अर्जुन ने कैसे उन परिस्थितियों को संभाला, अर्जुन कैसे उन परिस्थितियों से निकला और उस समय के विश्व युद्ध को जीता, ये आज हम चैप्टर 2 के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, गीता का सार। तो हरि हरि बोल जी, इसकी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीटा जी प्लीज। हरि हरि बोल।
हरी हरी बोल। चैप्टर सेकंड, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। पॉइंट फर्स्ट, अर्जुन अपनी दुर्बलता को स्वीकार करते हैं। वे विनीत भाव से भगवान की शरण में जाते हैं और उनसे मार्गदर्शन की याचना करते हैं। ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अर्जुन अब फंस चुका है, माया का टैंक अर्जुन के ऊपर हो चुका है और अर्जुन को अभी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि कहाँ जाना है कि नहीं जाना। अगर अर्जुन की लाइफ के साथ रिलेट करके मैं अपनी लाइफ के साथ और हम अपनी सभी अपनी लाइफ के साथ देखें तो हम भी इन्हीं परिस्थितियों में सारे फंसे हुए हैं। वैसे तो बोला गया कि पूरी भागवत गीता का अध्ययन हमें करना चाहिए, पर अगर हम पूरी भागवत गीता का अध्ययन नहीं कर पाए तो चैप्टर टू, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है गीता का सार, इसमें पूरी भागवत गीता का सार बताया गया है। और अगर हम इस चैप्टर का अध्ययन कर पाए तो हमें बहुत सारा ज्ञान ऐसा मिल सकता है जिससे हम अपनी परिस्थितियों से निकल सकते हैं। तो अर्जुन अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता है। सबसे पहले अर्जुन ने क्या चॉइस ली? अर्जुन ने अपनी जो उस परिस्थितियों में फंस गया था उसको स्वीकार करता है कि भगवान, मैंने अपने दम पर इन परिस्थितियों से निकलने की मैंने पूरी कोशिश कर ली, फिर मैं नहीं निकल पा रहा हूं। उसने सबसे बढ़िया चॉइस ये ली थी कि वह भगवान की शरण में चला गया था, भगवान से गाइडेंस मांगी, अपने सारे रिश्ते नातों को भूल के वो भगवान को एज ए गुरु मानना शुरू कर दिया था और एज ए स्टूडेंट भगवान की शरण में चला गया। और भगवान से उसने प्रार्थना की कि भगवान, आप मुझे इन परिस्थितियों से निकाल सकते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं इस युद्ध को लड़ूं या ना लड़ूं, मैं क्या करूं या क्या ना करूं। और ये अगर देखा जाए तो ये डिवोशन की प्रारंभिक अवस्था है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी हर रोज उस परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना, यही प्रेयर करनी चाहिए। अर्जुन ने चॉइस सही ली थी। अगर हम अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देखें तो हम भी हर रोज फंसते हैं, हर रोज परिस्थितियों से जूझते हैं। हमें अपना उन परिस्थितियों से हमने कैसे निकलना हमें ये समझ में नहीं आता और हम जो चॉइस लेते हैं वो गलत चॉइस लेते हैं। शायद हम समाज और सोसाइटी से जहाँ अपने दम से अपनी उन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करते हैं और निकलने की बजाय हम हर रोज दलदल में फंसने की कोशिश करते हैं। इसलिए परिस्थितियां तो हमारे जीवन में आती ही रहेंगी, कुछ अनुकूल होंगी और कुछ प्रतिकूल होंगी। अगर हम उस परम पिता परमेश्वर से शुद्ध भाव से, प्रेम भक्ति से भगवान की शरण में जाने की कोशिश करें, एज ए स्टूडेंट भगवान से शरण ग्रहण करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली अगर अर्जुन उस समय के उस विश्व युद्ध को जीत पाया था तो हमारे जीवन में जो छोटी छोटी परिस्थितियां, हम भी वहां से निकल पाएंगे। बशर्ते हमें करना क्या पड़ेगा, हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। हर रोज हमें ये प्रार्थना, सुबह उठ के हमें हर रोज ये प्रार्थना दोहरानी पड़ेगी। कोई भी परिस्थिति हो हम उससे निकल पाएंगे बशर्ते हम भगवान से प्रेर करें और भगवान की शरण में जाने की कोशिश करें। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट।
पॉइंट सेकंड, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान ये समझाते हैं कि शरीर का तो नाश हो जाता है परंतु आत्मा अजर, अमर व अविनाशी है। हरी हरि बोल।
हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अब भगवान कृष्ण को जब इस चीज का एहसास हो गया कि भी अर्जुन अंदर से टूट चुका है, देखो कौन पात्र होता है कोई भी ज्ञान लेने का, वही पात्र होता है। भगवान तो भगवान है, भगवान हर किसी को जज करते हैं, तो अर्जुन को भगवान ने जज कर लिया कि अब अर्जुन इस ज्ञान को लेने के लिए पात्र है, क्योंकि अर्जुन ने वो रिश्ते भुला चुका था, क्योंकि वो मामा और बुआ के लड़के थे। अर्जुन वो जो उनका बचपन की फ्रेंडशिप थी उसको भी भुला चुका है, वो टोटली भगवान की शरण में चला गया और उसने भगवान को गुरु माना कि आप मुझे इन परिस्थितियों से निकालें। और भगवान इस चीज को समझ चुके थे कि अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान है जो हमें उस परम पिता परमेश्वर की तरफ लेके जाएगा, अर्जुन को ज्ञान देना भगवान ने शुरू किया। शरीर, आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में अर्जुन को बताना शुरू किया। अर्जुन अपने आप को शरीर ही मान रहा था इससे पहले, इसी कारण वो उन गंभीर परिस्थितियों में फंसा था। इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, मैं इस युद्ध को जीतूंगा या हारूंगा, मुझे पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, अर्जुन अपने शरीरिक रिश्तों को प्राथमिकता पे रखते हुए अपने कुरुक्षेत्र को लड़ने की कोशिश कर रहा था। जब अर्जुन भगवान की शरण में गया तो भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान देना शुरू किया कि अर्जुन, ये शरीर तो नश्वर है, ये तो आज बचपन, कल जवानी और बुढ़ापा एक दिन खत्म हो जाएगा, और खत्म क्या नहीं होगा, आत्मा, आत्मा पहले भी थी, तू अर्जुन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, बिशर्ते तुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है, पर मुझे तो सारा सिस्टम पता है। इसलिए हमें अपने शारीरिक लेवल पर जितनी भी चेंजिंग होती है और शारीरिक लेवल पर हम जितने भी फंसे हुए हैं संसार और सोसाइटी में, उससे हमें इससे अपने मोह से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि आत्मा अमर है, उसका कभी नाश नहीं होने वाला, वो पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अगर कोई इस चीज को क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करेगा तो वो पाप और पुण्य से निकल जाएगा। अर्जुन ने यही बात समझी थी, अर्जुन तभी बोल पाया था कृष्य वचनम तबा, भगवान अब मैं आपके निर्देशानुसार सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। अगर हम इस कंसेप्ट को, इस भगवत ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम भी अपनी परिस्थितियों से आगे निकल सकते हैं। हरी हरि बोल जी, हरी बोल। नेक्स्ट
पॉइंट थर्ड, सुख दुख को तो क्षणिक है, इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और जो व्यक्ति इसमें सम रहता है वे मुक्ति के योग्य है। हरी हरि बोल।
हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें भी ये मैसेज लेने की जरूरत है। सुख दुख तो क्षणिक है भाई, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा है, क्षणिक है मीन्स ये जीवन का हिस्सा है, आएंगे और जाएंगे, जैसे रात आती है और जैसे दिन आता है, ना सदा रात रहेगी ना सदा दिन रहेगा। जैसे ऋतुएं भी आती जाती रहती हैं, उसी तरह सुख दुख का हमारे जीवन में आना और जाना चलता रहेगा। ये इंद्रिय बोध से हमारी फीलिंग से हम इन चीजों को महसूस करते हैं। भगवद गीता हमें ये ज्ञान देगी और कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाने की कोशिश करें कि भाई जो समभाव से इनको सहने की कोशिश करेगा एक्चुअली वही मुक्ति के लिए योग्य है, उसी को ये भगवत ध्यान मिलने वाला है, भगवत धाम मिलने वाला है। हम अमूमन क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जब सुख आते हैं तो हम उछलना शुरू करते हैं और जब दुख का समय हमारे जीवन में आता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, और हम ये सोचते हैं कि शायद सुख ही हमारे जीवन में चलता रहे, ये कभी होने वाला नहीं है। भगवान अर्जुन को इस पॉइंट के माध्यम से यही मैसेज देने की कोशिश करें कि अर्जुन संभाव से, इन परिस्थितियों से निकलना सीख भाई, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, ये आते जाते रहेंगे, ये शरीरी लेवल पे हैं भाई, आत्मा लेवल पर हमने उस परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करनी है। जब हम सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पर आगे चलते हुए उस परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें ये स्ट्रेंथ मिलती है, हमें ये पावर मिलती है कि हम अपने जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती हैं उनको हम हैंडल करना सीख लेते हैं। नो डाउट अर्जुन के मन में भी वो परेशानियां उसको परेशान कर रही थी, वो ये सोच रहा था, शारीरिक लेवल पे वो सोच रहा था ना कि क्या होने वाला है, उस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, मेरे द्वारा मेरे अपने मारे जाएंगे, क्योंकि वो शारीरिक लेवल पर उस युद्ध को देख रहा था, उसके रिजल्ट को देख रहा था, जबकि भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन तू उस परम पिता परमेश्वर के साथ मेरी गाइडेंस में इस युद्ध को लड़ने की कोशिश कर, डेफिनेटली तू इन परिस्थितियों को झेलते हुए आगे निकल जाएगा। हरी हरी बोल जी, हरी। नेक्स्ट
पॉइंट फोर्थ, हमें अपने कर्तव्य पालन में शोक नहीं करना चाहिए। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल जी, हरी। हमें अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, देखो हमें अपनी जितनी भी ड्यूटीज मिली हुई हैं वो हमें अपने अपने कार्मिक अकाउंटों के कारण मिली हुई है, अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया कुछ बुरा किया, इसलिए हमें आज के जीवन में जो भी ड्यूटीज मिली हुई हैं हमें उनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अर्जुन क्या कर रहा था, अर्जुन था क्षत्रिय और क्षत्रिय का धर्म क्या था, क्षत्रिय का धर्म था उस कुरुक्षेत्र को लड़ना, पर जब अर्जुन के ऊपर माया का अटैक हुआ तो अर्जुन की जो मेन ड्यूटी थी जिसके लिए उसने पूरे जीवन तैयारी की थी उससे वो भागने की कोशिश कर रहा था, शोक कर रहा था अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, मैं नहीं लड़ूंगा, जब मेरे द्वारा लड़ने से इसका रिजल्ट क्या होगा, सुख होगा दुख होगा, इन परिस्थितियों में अर्जुन फंस चुका था। मीन्स अपनी ड्यूटी से वो भागने की कोशिश कर रहा था, अर्जुन मोह में फंस गया था, अर्जुन शोक में फंस गया था। अर्जुन की लाइफ के साथ रिलेट करके हम अपने जीवन में देखने की कोशिश करें तो हम भी इन्हीं परिस्थितियों में फंसते हैं। हमें अपने पिछले कार्मिक कोंटों की वजह से हमें कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मिली हुई है, हमें अपनी उन ड्यूटीज को निभाने ही पड़ेगा। चाहे मुझे ये परिवार मिला है, चाहे मुझे ये समाज मिला है, चाहे मुझे अपना काम मिला है, उनको मुझे निभाना ही पड़ेगा। हम आज की डेट में करते हैं, जब माया अटैक हमारे ऊपर करती है तो हम भी मोह में फंस जाते हैं और अपने जीवन को एक धक्के की तरह जीने की कोशिश करते हैं, और हमें जो कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मिली हुई हैं उससे हम भागने की कोशिश करते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश नहीं करते। तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि कभी भी शोक नहीं करना चाहिए भाई, परिस्थितियों से हमें सामना करना ही पड़ेगा, चाहे अपनी ड्यूटीज को हंस के जियो, चाहे अपनी ड्यूटीज को रो के जियो। अगर हमने अपने कार्मिक अकाउंटों को किया हुआ है तो हमें अपनी ड्यूटीज तो निभानी ही पड़ेगी। इसलिए क्यों ना हम उस परम पिता परमेश्वर से प्रेर करते हुए, भगवान की शरण में जाते हुए भगवान से वो प्रेर करें, प्रार्थना करें और अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करें। डेफिनेटली अगर अर्जुन उन गंभीर परिस्थितियों से निकल गया था तो हम भी निकल पाएंगे। क्यों ना अपनी ड्यूटीज को हम हंसते हुए और एक कॉन्फिडेंस के साथ निभाने की कोशिश करें, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम उस परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, 4S के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में हम ये महसूस भी कर रहे हैं और महसूस भी करेंगे कि अगर भगवान से शरण लेते हुए, भगवान से गाइडेंस लेते हुए हम अपनी ड्यूटीज को अगर निभाने की कोशिश करेंगे, नो डाउट इन ड्यूटीज को निभाते हुए हमें सुख भी झेलना पड़ेगा और दुख भी झेलना पड़ेगा, पर हम फिर भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। हरी हरि बोल जी, हरि नेक्स्ट
पॉइंट 5th, कर्तव्य पालन चाहे फल की इच्छा से ही क्यों ना किया जाए, कर्म ना करने से तो बेहतर है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि
हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। देखो भगवान हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि भाई कर्म पालन चाहे वो फल की इच्छा से किया जाए। हम क्या करते हैं कि हम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि जब माया हमारे ऊपर अटैक करती है और हम गंभीर परिस्थितियों में फंसते हैं तो हम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ही नहीं करेंगे। तो भगवान हमें मैसेज क्या दे रहे हैं कि हमें अपनी ड्यूटी जो हमें मिली है उनको हमें निभाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम अटैचमेंट के साथ ही करें उन ड्यूटीज को, चाहे हम अपने पारिवारिक ड्यूटीज की निभाने की बात है, बच्चों की परवरिश की करने की बात है, जहां अपने वर्किंग प्लेस पे जाने की जरूरत है वहां हम जाते हैं तो हमें चाहे हम हमारी फलों के प्रति अटैचमेंट है, डेफिनेटली अगर अटैचमेंट रखोगे फिर भी अगर आप अपनी सिंसेरिटी के साथ अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश करो तो कर्म ना करने से तो बेटर है। नो डाउट हमें उस परम पिता परमेश्वर से प्रेयर प्रार्थना जरूर करते रहना चाहिए कि हम अपनी ड्यूटीज को मोरलिटी के साथ निभा पाए, बिना अटैचमेंट के निभा पाए, फल की इच्छा कम रखें। अगर हम ये प्रार्थना साथ में करते रहेंगे और उस परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और सिंसेरिटी के साथ अगर हम अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे भी बढ़ पाएंगे। अर्जुन भी तो यहीं फंसा हुआ था। अर्जुन पहले तो उसने भागने की कोशिश की, अर्जुन को भगवान प्रेरित करते हैं कि नहीं भाई अपनी ड्यूटीज को तो निभाना ही पड़ेगा, हम भाग के कहीं नहीं जा सकते, हम भगोड़े। अगर अर्जुन अपनी ड्यूटीज को छोड़ के भागता तो क्या आज हम भगवत गीता का अध्ययन कर पाते, क्या अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ अर्जुन का नाम लिया जाता? नहीं, अर्जुन को कृष्ण भगवान ने यही मैसेज दिया भाई तेरी ये ड्यूटी है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना और तू युद्ध को छोड़ के भाग नहीं सकता। इसलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने जब अर्जुन को इस बात की समझ आ गई तो उसने भगवान के साथ अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश की। हमने क्या करना, हमने भी उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ के अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश करनी है। हमें हम भाग के कहीं नहीं जा सकते, नो डाउट शुरू में हमें मुश्किल लग सकता है, हमारी अटैचमेंट हो सकती है, फलों के साथ अटैचमेंट होती है, हर इंसान की अटैचमेंट होती है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे हम शुरुआत तो करें उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ के अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश करें, भगवान से प्रार्थना करते रहें। शुरू में तो चलो फलों के साथ अटैचमेंट रहेगी, जैसे जैसे हम सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हमें ये क्लैरिटी आएगी, हमें भगवान से ये स्ट्रेंथ मिलेगी, पावर मिलेगी कि हम उस परम पिता परमेश्वर को सब कुछ समर्पित वित्त करते हुए, अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से निभाते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करना हमारे हाथ में, रिजल्ट देना उस परम पिता परमेश्वर के हाथ। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट
पॉइंट 6, कर्तव्य पालन फल की इच्छा से रहित व सम होकर करना ही योग कहलाता है। ऐसा निष्काम व्यक्ति चिंता व पाप से मुक्त हो जाता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। अर्जुन वैसे तो ग्रस्त था। अर्जुन ने ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपनी सारी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश की, परंतु साथ में वो योगी भी था, पर भगवान से गाइडेंस लेते हुए वो योगी बन पाया। हम भी अर्जुन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवद गीता का ज्ञान हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है। अर्जुन अगर अपनी सारी ड्यूटीज को निभाते हुए योगी बन पाया तो हम भी योगी बन सकते हैं। पर कैसे बन सकते हैं वो इस पॉइंट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। भगवान बताते हैं कि कर्म पालन का फल की इच्छा से रहित मीन्स हमें अपनी ड्यूटीज तो परफॉर्म करनी है, पर बिना फलों की अटैचमेंट के साथ। हमने क्या सीखना है? अर्जुन ने क्या किया था? अगर अर्जुन की परिस्थितियां चैप्टर 1 की देखें तो अर्जुन फलों के साथ अटैचमेंट बना के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं इस युद्ध को लड़ूंगा क्योंकि हमारा राइट है इस गद्दी पे बैठना, और उन्होंने पूरे जीवन तैयारी की थी और हमें ये सिंहासन मिलना चाहिए, ये उसकी अटैचमेंट थी। या फिर उसके ऊपर मोह का अटैक हुआ, माया का अटैक हुआ, तो अर्जुन ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस युद्ध को लड़ूंगा तो मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, मैं हार जाऊंगा तब क्या हुआ। मींस अर्जुन प्रेजेंट में जीने की कोशिश नहीं कर रहा था। अर्जुन को जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मिली हुई थी उसको वो निभाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो फंस चुका था, वो युद्ध के बारे में सोच रहा था उसका फल उसे क्या मिलने वाला है। यही अर्जुन फंस गया था, और यही हम सारे अपने जीवन में हम भी फंसते हैं। हम क्या करते हैं, आज से 10 साल बाद मेरे जीवन में क्या होने वाला है, आज जो मैं काम कर रहा हूं उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है। अगर हम इस भाव से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो हम फंसेंगे, चाहे हमारी ये बेस्ट ड्यूटीज ही क्यों ना। हम अपने बच्चों की परवरिश भी इस भाव से करते हैं कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, उनकी अच्छी एजुकेशन कराऊंगा और फिर वो मेरी सेवा करेंगे, हमें घुमाने ले जाएंगे, हमारा ये करेंगे वो करेंगे, और फिर जब परिस्थितियों से हमें सामना करना पड़ता है तो हमें दुख भी झेलने पड़ते हैं। तो भगवान ही हम ये मैसेज हमें दे रहे हैं कि कर्तव्य पालन जो है, हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो करनी है, हमें अपनी जितनी भी ड्यूटीज मिली हुई हैं उनको अच्छे तरीके से तो हमने करना है, पर किस भाव से करना है? फल की इच्छा के बिना और संभाव से, हरि कृपा और हरि इच्छा के कंसेप्ट को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है। मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा, मेरे कार्मिक कौन कुछ ऐसे थे, इस भाव से, संभाव से, बिना फलों की अटैचमेंट के आज की डेट में जितनी भी मुझे ड्यूटीज मिली है उनको हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, चाहे ये ड्यूटीज हमारी बेस्ट ड्यूटीज ही क्यों ना हो। बच्चों की परवरिश करना हमारी ये बेस्ट ड्यूटीज है, अगर उनको भी हम इस तरीके से करने की कोशिश करें कि हमने इनको मोरालिटी के साथ आगे लेके जाना है, हमने इनको सही गाइडेंस देनी है, हमने इनको परमपिता परमेश्वर के साथ जोड़ने की कोशिश करनी है, इस भाव से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समता से, ना हम सुख से घबराएं ना हम दुख से घबराएं, अगर इस भाव से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ऐसा निष्काम व्यक्ति चिंता व पाप से मुक्त हो जाता है। देखो मुक्ति और पाप से कौन मुक्त होगा? जो अपनी ड्यूटीज को ड्यूटी समझ के करने की कोशिश करेगा और जो प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेगा। हम तो आज की डेट में अपनी जितनी भी ड्यूटीज कर रहे हैं ना, पास्ट का बोझा लेके और फ्यूचर के बारे में चिंतित होके, कल क्या होने वाला है, यही तो अर्जुन कर रहा था, कल क्या होने वाला, जबकि वो इस बात को भूल चुका था कि ये युद्ध लड़ना मेरी ड्यूटी है और मैं किसकी प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़ू, क्योंकि उस युद्ध को परम पिता परमेश्वर करवाना चाहते थे। उनको पता था कि युद्ध क्यों हो रहा, किसको मैंने सजा देनी है, किसका मैंने उधार करना, क्या इस युद्ध का रिजल्ट होने वाला है, ये भगवान के हाथ में। जब अर्जुन को इस बात की समझ आ गई कि भाई मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैं क्यों ना भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध को लड़ूं, संभाव से मैं युद्ध लड़ूं, मैं अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के युद्ध लड़ूं और आज की डेट में मैं प्रेजेंट में युद्ध लड़ूं और रिजल्ट मैं छोड़ दूं उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में। डेफिनेटली जब अर्जुन ने इस भाव से अपने उस युद्ध को लड़ा तो उसको फिर पाप और पुण्य नहीं लगा, फिर उससे ऊपर उठ चुका था। फिर उसको इस बात का दुख नहीं हुआ कि मेरे द्वारा भीष्म पितामह मारेंगे, मेरे द्वारा मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी मारेंगे, मेरे द्वारा मेरे भाई मारेंगे। अर्जुन तो समझ चुका था, हमें ये समझने की जरूरत है। अगर हम अपनी ड्यूटीज को संभाव से उस परम पिता परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए करने की कोशिश करें, हमें जो कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज मिली हुई अपने कार्मिक अकाउंटों की द्वारा वो हमें निभानी ही पड़ेगी, चाहे रो के निभाएं चाहे हंस के निभाएं। तो क्यों ना हंस के निभाने की कोशिश करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के साथ अपनी ड्यूटीज को निभाने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हम पाप परेशानियों चिंता परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट
पॉइंट 7, भोग व ऐश्वर्य से असक्त व्यक्ति भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। देखो, हम डिवोशन के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और डिवोशन के साथ हम अपनी जो हमें कुछ ड्यूटीज मिली हुई हैं हम उनको भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर हम हमेशा भोगने की इच्छा से ही आगे बढ़े और ऐश्वर्य उसका क्रेडिट लेने की हम कोशिश करें, मेरे द्वारा ये हो रहा है, और हम रिजल्ट के पीछे कितने पागल हैं सारे, हमें ये सभी को पता है। अगर ये भाव लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी भी हमारी प्रोग्रेस नहीं होने वाली इस डिवोशन के रास्ते में। अगर अर्जुन की लाइफ के साथ हम रिलेट करके देखें तो अगर अर्जुन ये सोचता कि मैं इतना बड़ा महान योद्धा हूं, ऐश्वर्या के चक्कर में वो पड़ता, मेरे इस युद्ध का रिजल्ट मेरे हाथ में, मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा, ये करूंगा और फिर मैं इसका इस साम्राज्य का भोग करूंगा, क्या वो उस दिव्य ज्ञान को ले पाता, क्या वो उस कुरुक्षेत्र को जीत पाता? तो आंसर मिलता नहीं। वही आज की डेट में अगर हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आज की डेट में इन गंभीर परिस्थितियों में फंसते हैं तो उसके पीछे कारण ही ये है, हम भोगना चाहते हैं हर एक चीज को, हम फंसे हुए हैं ऐश्वर्य के चक्कर में, हम फंसे हुए हैं अपने नेम ऑफ फेम के चक्कर में। इसी कारण हम अपनी हमें जो अपनी ड्यूटीज मिली हुई हैं उनको हम अच्छे तरीके से नहीं निभा पाते। तो भगवान हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, भाई इससे ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे हम पहले पॉइंट में चर्चा कर चुके, संभाव हमें लाना पड़ेगा, संभाव तब आएगा, योगी हमें बनना पड़ेगा। सारी ड्यूटीज निभाते हुए हम सन्यासी भी बन सकते हैं और योगी भी बन सकते हैं, पर कैसे? हमें सत्संग साधना से और सदाचार के रास्ते पर आगे बढ़ने पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने सही चॉइस ली थी, भगवान की शरण में चला गया था और भगवान से गाइडेंस लेने की कोशिश की थी, अगर उसी तरह हम भी उस परम पिता परमेश्वर से गाइडेंस लेने की कोशिश करें, भगवान की शरण में जाने की कोशिश करें और इस ये जो भोगने के चक्कर से है ना, इसको बचने इससे बचने की कोशिश करें, और जो प्रोप्राइटरशिप हम बनने की कोशिश करते हैं, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, उससे अगर हम बचने की कोशिश करें तो डेफिनेटली हम भी आगे बढ़ सकते हैं और प्रोग्रेस हमारी सही मायने में तभी होगी जब हम फोरेस्ट के ऊपर काम करेंगे, भगवान के साथ जुड़ के अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली तभी हम अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी हो पाएगी। तभी तो हम गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से बार बार ये बोलते हैं, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बॉडीली लेवल पर अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करें, तभी सही मायने में इस संसारिक जीवन में हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से कर भी पाएंगे और आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ भी पाएंगे। हरी हरी बोल जी। नेक्स्ट पॉइंट।
हरी हरी बोल जी। पॉइंट 8, कर्म फल का भोग करने वाले कृपण होते हैं। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल। कर्म फल का भोग करने वाले कृपण होते हैं। कृपण गरीब कंजूस कुछ भी बोल सकते हो, और हम सारे आज की डेट में यही कर रहे हैं और यही हम गरीब हैं, कृपण हैं, हम कंजूस हो चुके हैं सारे। क्यों? वैसे तो भारी दृष्टि से हमें देखा जाए तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, पर कमी किस चीज की है? हम भोगना चाहते हैं कर्म फल का भोग। जो हमेशा अपनी ड्यूटीज को इस तरीके से करने की कोशिश करेगा कि मुझे क्या मिलने वाला है, अगर इस तरीके से हम अपनी ड्यूटीज को करेंगे और फलों के साथ ज्यादा अटैचमेंट बना के रखेंगे तो डेफिनेटली हम फंसेंगे, हमेशा कंजूस ही बने रहेंगे। और ये जो 84 लाख योनियों का सिस्टम है ना, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, इसमें हम फंसते रहेंगे, चलते रहेंगे भोगते रहेंगे, चलते रहेंगे भोगते रहेंगे। अगर हम इन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर हम भगवत ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, और अगर अर्जुन को सही मायने में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, अर्जुन से हम कुछ सीखना चाहते हैं, भगवत गीता का जो ज्ञान अर्जुन को दिया गया था और अर्जुन के माध्यम से हम ये सीखना चाहते हैं, तो हमेशा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, फलों के प्रति अटैचमेंट कम रखें भाई। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है भाई, अगर रिजल्ट अर्जुन के हाथ में होता तो शायद अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान नहीं दे जाता। अर्जुन कॉम्पिटेंट था भाई, उस युद्ध को जीत सकता था, पर उसने सबसे बड़ी उसमें कमी क्या थी, वो रिजल्ट के बारे में पहले ही उसने सोचना शुरू कर दिया। हम भी यही हैं, हम कर सकते हैं, पर करने से पहले हम रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मुझे क्या मिलने वाला, इस काम को मैं करूंगा तो मेरा क्या फायदा होने वाला है, आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज से 20 साल बाद क्या होगा, भाई किसी के हाथ में फ्यूचर हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने पास्ट के बोझे से बचने की कोशिश करें, प्रेजेंट में जिए, फ्यूचर के बारे में कम चिंतित रहें, और फलों के प्रति अटैचमेंट कम रखें, और हमेशा अपनी ड्यूटीज को उस पर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करने की कोशिश करें, चाहे हमारी ड्यूटी कोई भी हो, ए से लेके जेड तक हम जितनी भी ड्यूटीज करते हैं, अगर हम भागवत गीता को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ये मानते हैं कि भगवत ज्ञान जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो इस ज्ञान को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके देखने की कोशिश करें कि हमारी अटैचमेंट किसकी कितने कितनी किसके साथ है। बच्चों के साथ है, सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारी बच्चों के साथ है, हम बच्चों की परवरिश इसलिए कर रहे हैं कि कल को वो हमारी सेवा करेंगे, हम बच्चों की परवरिश इसलिए कर रहे हैं कि कल को हमारी वो देखभाल करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, ये हमारी अटैचमेंट है, ये हमारा मोह है। क्यों ना हम उस परम पिता परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने बच्चों की भी ड्यूटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करें। भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया गया गिफ्ट है हमारे लिए, तो हम उनकी परवरिश भी अगर शुद्ध भाव से करने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी के साथ जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, छोटी सी जीवन यात्रा हमें मिली हुई है, किस लिए मिली हुई है, शरीर के माध्यम से अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से करें, आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो देंगे भगवान, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके उनको ग्रहण करने की कोशिश करें। अगर हम फलों के प्रति अटैचमेंट रखेंगे तो भगवान बोलते कि वो कृपण होते हैं, वही गरीब है, कंजूस है, और आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी जिसका मैं भी पार्ट हूं, शायद हम सारे कंजूस ही बने रहेंगे अगर हम उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से निभाना चाहते हैं तो हमेशा उस परम पिता परमेश्वर से गाइडेंस लें, और जैसा कि आज के चैप्टर के माध्यम से हमने समझा, हम सारे फंसे हुए हैं, जैसे अर्जुन फंसा हुआ था वैसे हम भी फंसे हुए हैं। शायद अर्जुन की प्रॉब्लम 100% थी, हमारी प्रॉब्लम 5% है। अर्जुन ने सही च्वाइस क्या ली थी, भगवान की शरण में चला गया था, भगवान से गाइडेंस मांगी, भगवान मैं अपने कुरुक्षेत्र को नहीं लड़ पा रहा हूं, मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को सही तरीके से नहीं निभा पा रहा हूं। हम भी उन्हीं परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, अगर हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रेयर करें, भगवान से गाइडेंस मांगने की कोशिश करें, तो अर्जुन अगर उन परिस्थितियों से निकल सकता है तो हम क्यों नहीं निकल सकते हैं। पर सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यह है कि हम कभी भी भगवान से गाइडेंस लेने की कोशिश नहीं करते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, प्रेयर करें, भगवान से गाइडेंस मांगें, डेफिनेटली हम इन परिस्थितियों से निकल पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरि हरि बोल जी।
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रोशन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से आज भक्ति के स्कूल में एडमिशन हुई हम सभी की। बहुत ही वंडरफुल चैप्टर, बहुत ही प्यारा, जो कि पूरी भागवत गीता का एक किस्म से सार है ना। तो उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो श्री कृष्णा जी हमें समझाना चाहते हैं वो आपके माध्यम से आज हम लोगों ने समझे, और बहुत ही आनंद आया। और सबसे पहले तो हर्षित होने की ये बात है कि आज के इतने शुभ दिन में निखिल जी का जन्मदिन है, मोहिनी एकादशी है, और इस पावन दिन में भक्ति में एक बार फिर हमारी एडमिशन हुई, तो इससे बढ़िया और क्या टाइम हो सकता है एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से भक्ति में अग्रसर होने के लिए। आज समझ में आया कि हम्बल होकर के एज इट इज सिचुएशन को स्वीकार करना है और भगवान की शरण को ग्रहण करना है, इससे बेस्ट सिचुएशन कोई भी नहीं हो सकती। लेकिन हम 99% ये चॉइस नहीं लेते हैं, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड की चॉइस लेते हैं, हम लोग तड़पते हैं, रोते हैं, माया की तरफ जाते हैं। और जब हम लोग ये चॉइस लेंगे तब एक्चुअल में हम लोग जो है भक्ति के रास्ते में पहला कदम रखेंगे, और फिर जैसे अर्जुन जी ने अपने कुरुक्षेत्र में युद्ध को जीता है, तब जा करके हम अपने कुरुक्षेत्र के युद्ध को जीतने की तरफ अग्रसर होंगे। आगे प्रभु जी ने हम लोगों को आत्मा का ज्ञान दिया रोशन जी के माध्यम से। हम सभी अपने आप को शरीर समझते हैं और जो कि नश्वर है, और इसलिए हमेशा दुखी रहते हैं। हम लोगों का सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं और हमेशा इसके सुख और दुख के साथ जुड़ करके दुखी होते रहते हैं। लेकिन आज हमें रोशन जी ने समझाया है कि बेसिकली हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जब इतना कुछ है तो ये संतोष की बात है, ये खुशी की बात है, और इसकी वजह से हम लोगों को आनंदित ही रहना चाहिए। तो आज हमने ये भी समझा कि हम बेसिकली हैं कौन। आगे हम लोगों को बताया गया समभाव में रहने की इम्पोर्टेंस, और जब हम समभाव में रहते हैं तो हम किस चीज से बचते हैं, हाई एंड लो फेज से बचते हैं, ईगो एंड डिप्रेशन से बचते हैं। तो ये अगर हम लोग हमारी लाइफ में हाई एंड लो फेज, ईगो एंड डिप्रेशन ये सब कुछ ना आए तो बेसिकली हमारी लाइफ इजी ही होने वाली है और हम खुशियों भरा जीवन जो है वो जीने वाले हैं। आगे हम लोगों को बताया गया कि जो जो भी ड्यूटीज हमें मिली हैं वो विदाउट अटैचमेंट हमें करनी है। और ये क्यों भगवान जी हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरों की लाइफ ज्यादा इजी, ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल लगती है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो ठीक नहीं है, वो जिस तरीके से हमें ड्यूटीज मिली हैं वो ठीक नहीं है। हमें दूसरे का काम, अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हमें लगता है यार जॉब गोइंग लेडीज वो ज्यादा बेटर है। जॉब गोइंग कोई है, वर्किंग वुमन है, तो उसे लगता है यार आराम से घर में रहना तो अच्छा है। अगर कोई बिजनेसमैन है ना, बिजनेस वुमन है, उसको लगेगा कि यार 9 to 5 की जो जॉब का सिस्टम होता है वो ज्यादा बेटर है। और जबकि एक जॉब गोइंग इंडिविजुअल सोचता है कि जिसका अपना बिजनेस है वो ज्यादा खुशी है, है ना। तो हमें ये बताया गया आज रोशन जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली हमें समझाया कि जो जो भी ड्यूटीज में हमें डाला गया है उसको विदाउट अटैचमेंट हम लोगों को करना है, और इसी से हम लोग योगी बन सकते हैं, और इसी से हम लोग चिंता और पाप मुक्त हो सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल क्या है, हम लोगों को ये भी बताया गया, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हम अटैचमेंट हैं अपने रिजल्ट्स के साथ ये सब कुछ, तो हम लोगों को कर्तव्य पालन तो करना ही करना है, जो जो भी हमें, चाहे वो हंसते हुए करें चाहे रोते हुए, लेकिन करना ही है। क्योंकि प्रभु जी हमें बता रहे हैं कि वो एटलीस्ट कुछ ना करने से बहुत बहुत बेटर है। आगे, भोगी व्यक्ति जो है उसकी कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती, जो ऐश्वर्य में और भोग में डूबा हुआ है। तो अगर हम रियल लाइफ में भी देखें, रियल लाइफ मेरे बोलने का मतलब है मटेरियल लाइफ, क्योंकि हम उसी में ज्यादा जीते हैं, तो मटेरियल लाइफ में भी अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो हमें सेक्रीफाइस करना है, हम लोगों को तपस्या करनी है। एक स्टूडेंट को भी अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उसको अपनी नींदें सेक्रीफाइस करनी है, अपने टीवी सेक्रीफाइस करने हैं, तब वो अच्छा रिजल्ट लाएगा। अगर किसी जॉब में हम लोगों ने एक्सेल करना है तो हम लोगों को वहां पर भी मेहनत करना है। तो बेसिकली हम अगर भोग को और ऐश्वर्य को त्यागेंगे तभी हम किसी चीज में एक्सेल कर पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम प्रभु की भक्ति को पाना चाहते हैं, भक्ति के रास्ते में आगे जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को भोगी और ऐश्वर्य में लिप्त होने वाला इंसान नहीं बनना है। बेसिकली हम लोगों को जो भी भक्ति में आगे जाना है तो हम लोगों को इन चीजों का त्याग करना है और तपस्या के लिए अग्रसर रहना है। लास्ट में हम लोगों को रोशन जी ने बताया कि प्रेजेंट में जीना है और अटैचमेंट इन रिजल्ट नहीं रखना है, है ना। क्योंकि जो कर्म फल करके हम लोग उसके रिजल्ट को भोगने की इच्छा करते हैं, एक्चुअली वो कृपण इंसान की एक निशानी है ना, कंजूस इंसान की। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को कुछ दिया है उसके बदले में मैं कुछ चाहूं तो मतलब मैं कंजूस हूँ। हमने कोई काम किया है उसके बदले में मुझे एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए कि मुझे ऐसा ही चाहिए, दैट मीन्स कि वो एक गलत सिनेरियो सोचने का, तो हम लोगों ने इससे बचना है। तो आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और आनंदमयी और ज्ञान वर्धक, और इसी चैप्टर को आगे कल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे कि बेसिकली भगवान जी हम लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना करवाना चाहते हैं। तो आज का सत्संग सच्ची में बहुत बहुत दिव्य। थैंक यू सो मच रोशन जी। वंस अगेन हमारे साथ स्टूडियो में सुनीता जी भी हैं जुग्याल से, उनसे जानते हैं कि आज के सत्संग में उन्होंने क्या सीखा। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो वेरी मच ईशा जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न शस्त्र पे ना शास्त्र पे, न धन पे और ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। हरी हरी बोल। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को आज मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही हमारे मेंटर और गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी का आज जन्मदिन है, तो उनको भी दिल की गहराइयों से जन्मदिन की शुभकामनाएं। भगवान करे वो इसी तरह इस सत्य के मार्ग पर चलते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे, और जो उनका विजन है कि हर घर मंदिर हर मन मंदिर उस वो जो है साकार करें प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का सत्संग बहुत डिवाइन था। चैप्टर टू रोशन जी ने और ईशा जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो कुछ एक जो मेरी लर्निंग्स बनी हैं वो मैं भी यहाँ पे शेयर करूंगी। तो जैसे कि हमने सुना पढ़ा आज कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली चैप्टर टू, तो बिल्कुल देखिए अर्जुन जो थे वो मोहग्रस्त हो चुके थे, तो उन्होंने चॉइस एटलीस्ट ये ली कि अपनी जो दुर्बलताओं को स्वीकार किया और इन कमजोरियों जो उनको दिख रही थी कि मेरे सगे संबंधी हैं मेरे सामने, मैं इनको कैसे मारूंगा तो मुझे नुकसान मतलब पाप लगेगा, और ये मेरे अपने हैं लोग क्या कहेंगे, इस तरह के अमूमन जैसे हमारे लोगों के मन में विचार आते रहते हैं अपनी ड्यूटीज को निभाते समय, तो उसके मन में भी आ रहा था, तो वो कन्फ्यूज था। लेकिन उसकी एक बात बहुत सीखने वाली हमें मिली आज कि जब वो कंफ्यूज थे अर्जुन, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और किसी के पास नहीं गए। देखो कितने सारे थे उनके ज्ञानी विद्वान, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वही है ना, हो सकता है लोग हमें सलाह अच्छी भी दें लेकिन उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं, वो मतलब अपनी लिमिट से आगे नहीं दे सकते अच्छी सलाह। लेकिन जो भगवान है वो परफेक्ट है, वो अनलिमिटेड है, और अगर हम परफेक्ट किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं तो हमारी लाइफ में भी अगर डिस्टरबेंस आती है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान हमें कदम कदम पर जो है वो गाइड करते हैं, लेकिन वही है कि चॉइस हमारी होनी चाहिए जैसे कि अर्जुन ने ली। और बिल्कुल यही है कि हम लोग ब्लेस्ड हैं यहाँ पर, जितने लोग अभी यहाँ पे सत्संग जुड़े हैं, जब बाद में जो पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ पे सत्संग को सुनते हैं, तो एटलीस्ट हम भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कंफ्यूज थे, तभी हमें जरूरत पड़ी कि चलो हम किसी सत्संग से सुनते हैं, कहीं हमें कोई पीस ऑफ माइंड मिले। तो भगवान की हमें हमारे ऊपर विशेष कृपा है ये कि हमें इतना प्यारा जो मंच मिला गोलोक एक्सप्रेस, और इसके माध्यम से हम चाहे श्रवण शक्ति से ही, श्रवण के माध्यम से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के हल हो रहे हैं। जैसे आज हमें रोशन जी ने कितने प्यारे ढंग से गाइड किया है, तो बहुत सारे व्यूवर्स के भी इंक्लूडेड मी, हमारे बहुत सारे जो अपने अंदर कंफ्यूजन चल रही होती है कि हमें क्या करना चाहिए अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए, तो सभी के जे सॉर्ट आउट हुए होंगे। और ये भगवान की वही बात है कि बार बार की विशेष कृपा है कि एटलीस्ट हमने चॉइस ले ली अर्जुन की तरह, और ये चॉइस जो है हमारी बरकरार है, यही प्रेयर है। और आगे जब भगवान की शरण में अर्जुन गए हैं तो भगवान फिर उन्हें ज्ञान देते हैं, आत्मा का भी ज्ञान देते हैं। जैसे हम लोग हैं बॉडी सेंट्रिक, अपने आप को मतलब बॉडी ही मानते हैं, तो मैं मेरे जैसे मूर्ख तो यही थे कि सब कुछ शरीर ही है, आत्मा नाम की मतलब चीज एक चीज मानते थे जो खुद थे, और सोचती थी कि आत्मा जो एक डरावनी चीज है और उसे वो डरने वाली चीज है। कितनी मतलब अंधकार में हम जी रहे थे, और इस मंच से जुड़कर पता चला है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है जैसे कि हमें बताया गया। और हम जब बॉडी सेंट्रिक होते हैं तो फिर अटैचमेंट हो जाती है चीजों से, लेकिन जब सोल लेवल पे जाते हैं तो फिर सारी चीजें जो क्लियर होती हैं, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज की क्लैरिटी होती है। और साथ भी हमने ये भी सीखा कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि जैसे अर्जुन कंफ्यूज हो गए थे युद्ध क्षेत्र में, या दुखों का सामना करना पड़ा था कि ये मेरे मतलब पिता माँ है, ये मेरे गुरु हैं, तो मैं उनको दुख हो रहा था उनको देख के, क्योंकि बॉडी लेवल पे उनको अटैचमेंट हो चुकी थी। तो भगवान ने हमें ये भी गाइड किया यहाँ पे कि हमें यह सुख और दुख को समभाव रहकर सहन करना चाहिए। ये एक मतलब ऋतुओं के समान है सुख और दुख। देखो हम लोग भी मटेरियल लाइफ में क्या करते हैं कि हमेशा, जब तक इस मंच के साथ मैं भी नहीं जुड़ी थी, तो हमेशा भगवान के आगे जाना और भगवान अच्छा अच्छा हो सब कुछ, तो ये कैसे हो सकता है कि बस सुख ही सुख आए हमारी लाइफ में, कभी दुख आए नहीं? अगर दुख नहीं आएंगे तो हमें सीखने को कैसे मिलेगा? तो ये जो हमें बार बार हमारे मेंटर्स के माध्यम से पता चलता है कि ये जो संसार है ये दुखालय है, यहाँ पे हमें मतलब एक जैसे जेल है, जेल में भेजा जाता है, किसी ने क्राइम किया हो तो वो जेल में जाता है, तो कि जेल में क्या उसको सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उसको मतलब तरह तरह के से उसे मतलब काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है ताकि उसे एहसास हो कि मैं इस जेल में वापस ना आऊं, अच्छी बाहर जाऊं जेल में तो अच्छे काम करूं। अगर उसको सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी उस जेल में तो वो बाहर जाएगा, जब जेल से अपनी सजा काट के तो दोबारा वही गड़बड़ करेगा तो सुधरेगा कैसे? तो वैसे ये है, ये सुख और दुख जैसे हमारी लाइफ में आते हैं ना, मेनली दुख की बात करूं तो वो हमें सिखाते हैं कि नहीं, ये इस संसार में ये चलता रहेगा। और दुख सुख भी हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से आते हैं, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। पहले तो हम ये है कि सुख आए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और दुख हुए तो भगवान के ऊपर कर दिया। तो ये दुखालय है, ये चीजें सुख दुख जो आने हैं हमारे कार्मिक अकाउंट्स की वजह से। जैसे हमें बड़े अच्छे से भगवान ने यहाँ बताया कि जैसे मौसम चेंज होते रहते हैं, तो मौसम भी एक जैसे रहते हैं, कभी हमें बड़ी गर्मी होती है, कभी सर्दियां होती हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि तरह तरह के मौसम हम एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह ये सुख दुख आते रहेंगे, इनको संभाव रहना है, संभाव रहकर मतलब सहन करना है। लेकिन हम संभाव कैसे रह पाएंगे? तो संभव तभी रह पाएंगे जब हम भगवान की शरण में रहोगे, भगवान से गाइडेंस लेंगे, तो फिर हम उस सुख और दुख को बैलेंस लाइफ से सहन करना सीख पाएंगे। अदरवाइज तो वही होगा कि सुख आया तो बड़े ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब थोड़ा सा भी दुख आया तो हम डीप सोरो में और डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये चीजें अब कल हमें बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो यही है, भगवान ने बड़े अच्छे से इसे ऊपर उठने की बात की है। और एक चीज यहाँ पे भगवान ने ये बताया कि अपने ड्यूटीज को कैसे निभाना है। तो यही है कि हम भी पहले यही करते थे कि ड्यूटीज को एक तो मुझे करना पड़ता है कि भाव से करते थे और सोच रहे कि ये मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें हर काम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, भगवान को खुश करने के लिए करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम तो दुनियादारी को खुश ज्यादातर तो जहाँ तो करना पड़ना भाव से करते हैं, जहाँ फिर ये है कि दुनियादारी को खुश करने के भाव से करते हैं। और दुनिया को खुश करने के भाव से जब करते हैं तो वहां से जब मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो हमें अगर भगवान की खुशी में रहकर करेंगे तो रिजल्ट के साथ हमारी अटैचमेंट नहीं होगी कि ठीक है जो भगवान जो मेरे लिए, एक तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। अगर मैं भगवान की गाइडेंस में रहकर काम करूंगा तो जो भी उसे जो भी खट्टा मीठा जो होगा मुझे संभाव रहकर उसको सहन करना पड़ेगा। तो इससे ये होगा कि फिर हम जो अपनी एक प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने की क्षमता है, वो भी हमारी ठीक रहेगी। जैसे अर्जुन जो था, अर्जुन जो चैप्टर 2 से पहले क्या थे, चैप्टर 1 में वो शोकाग्रस्त थे और बिल्कुल बैठ गए थे कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता, युद्ध नहीं कर सकता मैं। लेकिन जब भगवान ने उनको गाइडेंस दी तो अध्याय 18 में बिल्कुल वो ऐसे हो गए, सीधे हो गए और कहने लगे कि भगवान अब बताओ मुझे क्या करना है। तो उनकी कितना मतलब चेंज आया उनके मतलब ड्यूटी परफॉर्म करने में। तो ऐसा ही है, अगर भगवान की शरण रहकर करेंगे तो हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे प्रकार से कर पाएंगे और अंदर से जो डर है, तरह तरह के जो हमारे डर होते हैं वो जो है खत्म होंगे। तो यही है कि हमें ड्यूटीज को भगवान की शरण में रहकर करना है। और इस तरह अगर हम करेंगे तो हम अपनी मटेरियल लाइफ में भी योगी और सन्यासी बनकर रह सकते हैं। जैसे कि हम पहले सुनते थे कि योगी सन्यासी पता नहीं हम नहीं रह सकते, जो जंगलों और साधु संत ही ऐसा रह सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहकर भी आप योगी सन्यासी रह सकते हैं। बस एक ही एक कंडीशन एक ही है कि हमें भगवान की शरण में रहना है और अपनी ड्यूटीज को उनकी शरण में रहते हुए परफॉर्म करना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है और भगवान का नाम लेते ना। और ये चीज तभी हम कर पाएंगे जब हम संग करेंगे। तो हमें बड़ा प्यारा संग मिल चुका है गोलोक एक्सप्रेस का, इसके माध्यम से हमें 4S पे ऊपर काम करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है और तब हम जो है हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। और हमें जो महामंत्र दिया जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके माध्यम से और भी ज्यादा जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, ये स्ट्रेंथ जो है ये पावर इसी तरह बरकरार है, यही प्रभु से मनोकामना है मेरी। तो ये मेरा आज का रिव्यू यहीं तक था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। थैंक यू सो मच,
हरे बोल, हरे हरे बोल। सुनीता जी बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ आपने बहुत ही प्यारे रिव्यू हमारे साथ शेयर किए और पूरे गोलोक एक्सप्रेस के विजन को ही आपने अपने एक छोटे से रिव्यू में जो है वो समेट दिया है ना। 18वें अध्याय तक जो है वो आपने टच किया, तो बहुत ही आनंद आया आपके रिव्यू को सुन करके। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी इंडिविजुअल हमारे साथ कमेंट सेक्शन में प्रेयर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो गोलोक एक्सप्रेस के सारे डिवोटीज आप सभी भी मिलकर उनके लिए प्रेयर्स कर सकते हैं, और कोई और इंडिविजुअल भी अपने लव्ड वंस के लिए, अपने लिए प्रेयर्स करवाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही क्यों ना हम सभी अपने मेंटर निखिल जी के इस बर्थडे पर हम लोग प्रेयर्स करके उनको गिफ्ट दें, उनके लिए माला जाप करें और प्रभु से उनकी दीर्घायु और बहुत ही प्यारे विजन के लिए प्रेयर करें, ताकि हम भी इस रास्ते पर उनके साथ हाथ पकड़ करके धीरे धीरे चलते रहे। हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं निधि जी के पास गुरदासपुर और उनसे जानते हैं उनके विचार। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू ईशा जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत गीता की जय। तो आज का सत्संग बहुत ही दिव्य, आज का दिन भी बहुत दिव्य। तो आज मोहिनी एकादशी है, हमारे स्पिरिचुअल मेंटर गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी का आज जन्म दिवस है, बर्थडे है उनका। तो आज के इस शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि ईशा जी ने बोला कि हम अपने स्पिरिचुअल मेंटर के लिए कुछ माला डेडिकेट करें, तो मैं भी आज एकादशी के दिन जो भी भगवान जी से प्रेयर करती हूँ कि जो भी मैं माला करूँ वो सब की सब मैं अपने स्पिरिचुअल मेंटर जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है उनको डेडिकेट करना चाहूंगी। तो आज का सत्संग रोशन जी के माध्यम से हमने सुना, बहुत ही ज्ञानवर्धक था, बहुत कुछ जानने को मिला। तो सबसे पहला कंसेप्ट उन्होंने जो बताया वो था शरणागति के बारे में। अर्जुन भगवान के शरणागत हुए। अर्जुन जब शरणागत हुए तो देखो अर्जुन जो थे वो भगवान के बचपन से ही मित्र भी थे, उनके कजन थे, लेकिन भगवान ने उनको ज्ञान बचपन से ही क्यों नहीं दिया? ज्ञान तभी दिया जब वो भगवान के शरणागत हुए। तो हमें भी ज्ञान तब मिलेगा जब हम भगवान के टोटली हम सरेंडर कर देंगे, शरणागत हो जाएंगे। केवल कहने से कि हम भगवान के शरणागत हो गए हैं, क्या हम शरणागत हो जाते हैं? तो इसके लिए एक टेस्ट है, हमें अपना टेंशन का ग्राफ चेक करना है। अगर तो हमें टेंशन रहती है, अगर हम आज भी चिंता कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी शरणागति में कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो क्योंकि जब भगवान पे ही सब कुछ हो गया तो फिर चिंता तो होनी नहीं चाहिए, फिर डर तो किसी चीज का होना नहीं चाहिए। तो हमें चिंता मुक्त हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर हम शरणागत हो जाते हैं। तो हमें बिल्कुल अर्जुन की तरह ही शरणागत होना है और भगवान के चरण शरण में खुद को समर्पण करना है। तो शरणागत होने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, सबसे पहले उन्होंने उनको साइंस ऑफ सोल के बारे में बताया। साइंस ऑफ सोल, तो सोल क्या है? एक एनर्जी है। तो हमने न्यूटन के लॉ में साइंस में भी यही पढ़ा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आत्मा भी कभी क्रिएट नहीं की जा सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। पहले भी आत्मा थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। तो अजर है, अमर है, अविनाशी है आत्मा। तो आत्मा हमेशा ही रहेगी। हमें आत्मा खत्म क्या होता है? खत्म तो शरीर होता है, आत्मा तो अमर ही रहती है। शरीर के साथ हम अटैचमेंट बना लेते हैं जो कि हमें नहीं बनानी। अगर शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, आत्मा अमर है, तो फिर हम शरीर धारण ही क्यों करते हैं? परमात्मा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए शरीर धारण करते हैं। इस शरीर के फॉर्म में हमने इतने सारे जो कर्म किए हैं उन कर्मों का भुगतान करने के लिए हम लोग शरीर धारण करते हैं। तो अगर हमें भगवान ने शरीर दिया है तो हमें इसका पूरा का पूरा मनुष्य शरीर का लाभ उठाना है, भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, सो दैट कि हम इस आत्मा का, हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा जो सही लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सके, हम इस परमात्मा से कनेक्ट हो सके और गोलोक धाम को हम प्राप्त कर सके। तो आत्मा अमर है, हमने हमेशा सुना है जब किसी की डेथ होती है तो हम यही सुनते हैं कि किसी का देहांत हो गया। कभी भी ये नहीं सुना कि आत्मांत हो गया, क्योंकि आत्मा का तो अंत होता ही नहीं, अंत तो देह का होता है। तो मृत्यु जो है वो सबको आनी है, ये शरीर एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है। तो अगर हम ये शरीर खत्म हो जाता है और इस शरीर के खत्म होने के साथ जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं, जितने भी हमारे रिश्ते नाते होते हैं, बॉडीली फॉर्म में जो जो कुछ हमने एजुकेशन अटेन किया है, पोजिशन अटेन किया है, पैसा कमाया है, वर्ल्डली मटेरियल में जो कुछ भी हमने कमाया है वो सब कुछ हमने यहीं पे छोड़ जाना है, वो सब कुछ खत्म हो जाना है। तो फिर इन चीजों से अटैचमेंट किस बात की? बॉडीली फॉर्म में हमें जो भी मिला हमें उससे अटैचमेंट नहीं रखनी। हर रिलेशन को हमें भगवान की दी गई ड्यूटी समझ के निभाना है, उसको हमें भगवान की दी हुई अपना कर्तव्य समझ के हमें हर कर्म करना है, कर्म तो करना है, लेकिन आज भूषण जी ने बड़े ही प्यारे तरीके से बताया कर्म करते जाना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी। फल की इच्छा करना हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो भगवान का डिपार्टमेंट है। भगवान हमें बताते हैं, भगवान डिसाइड करते हैं कि हमने क्या किया और बदले में हमें क्या मिलेगा। अब क्योंकि हम ये सोचे कि हमें फल की इच्छा नहीं करनी, फल तो भगवान ने ही डिसाइड करना है, होना तो वही है जो कि भगवान जी चाहेंगे, तो फिर हम कर्म ही क्यों करें। तो रोशन जी ने आज हमें ये भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ये सोच नहीं रखनी कि हम कर्म ना करें। कर्म ना करना कभी भी अच्छा नहीं होता, बेटर है कि हम कर्म ना करने की बजाय हम फल की इच्छा रख के ही कर्म कर ले। तो वर्स्ट है कि हम कर्म ना करें, बेटर है कि हम फल की इच्छा से कर्म करें, लेकिन बेस्ट है कि अगर हम इच्छा को भी त्याग करें और हम अपने कर्म करते जाएं। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब हम परमात्मा की शरणागत होंगे, भगवान की प्रेयर्स, हमेशा भगवान की प्रेयर्स करते रहेंगे, हम सेवा सत्संग साधना सेवा में हमेशा लगे रहेंगे और एक सदाचारी जीवन व्यतीत करेंगे। सुख दुख का कंसेप्ट भी बताया, सुख दुख में हमें सम रहना है, सुख दुख में सम रहना ही योग कहलाता है। तो बड़े ही प्यारे ढंग से आज रोशन जी ने बताया कि अर्जुन गृहस्थ थे लेकिन साथ साथ में वो योगी भी थे। तो हमें भी अगर गृहस्थ है, हम सब भी गृहस्थ हैं और हमें भी योगी बनना है। कैसे बन सकेंगे? घर में रहते हुए ही हम योगी बन सकते हैं, भगवान के शरणागत होकर, भगवान की दी हुई टीचिंग्स को जानकर, उसे समझकर, उसे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे ढालकर हम भी योगी बन सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत कुछ आज सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन समय के अभाव के कारण अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच ईशा जी, थैंक यू सो मच रोशन जी, एंड थैंक यू गोलोक एक्सप्रेस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। निधि जी बहुत ही आनंद आया आपको सुनकर के भी, और आपकी डीप लर्निंग्स और रियलाइजेशंस जो है वो बहुत ही प्यारी और वैल्यूएबल। अपने वर्क प्लेस पे भी और अपनी लाइफ में भी आप जैसे इन सब लर्निंग्स को अप्लाई कर रहे हैं और ये रियलाइजेशंस बहुत ही सुंदर है, और इनको समझ करके लगता है कि नहीं, सच में ही हम सभी को जागने की जरूरत है। और जब हम जाग जाएंगे और अपने कर्म करने का ये जो तरीका है इसको चेंज करेंगे तो बेसिकली हमारी लाइफ में खुशियां आने ही वाली हैं। तो बहुत ही आनंद आया आपको सुनकर के भी। फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, भजन की तरफ, राकेश वैद जी के पास चंबा, और सुनते हैं उनके श्रीमुख से एक प्यारा सा भजन। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का, और सभी व्यूअर्स को पहले तो मैं मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं देता हूँ। आज मोहिनी एकादशी है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे मेंटर श्री निखिल जी का जन्मदिन भी है, मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ उनको, और भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह से हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और भगवान के रास्ते पे चलने का हमें रास्ता दिखाते रहें। बहुत ही प्यारा सत्संग आज का रोशन जी ने लीड किया और बहुत प्यारे पॉइंट्स हमें बताए, और जो मैं थोड़ा बहुत सत्संग से समझ पाया कि ये समझते हैं कि हम लोग एक शरीर हैं, पर बेसिकली हम लोग शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं, और आत्मा रूप में हम भगवान का अंश हैं और हम लोग टोटली बिल्कुल प्योर है, और हम में भी वही गुण है जो भगवान में है, और हमें हम लोग सब लोग सुख दुख से ऊपर हैं। हम लोगों ने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसीलिए हम लोग इस सुख दुख के एहसास में रहते हैं, कभी दुख में रहते हैं, कभी सुख में रहते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब हम लोग एक अपने आप को आत्मा जान पाते हैं तब हम समझते हैं कि नहीं, हम सब इन सब चीजों से ऊपर है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है और हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि भगवान आप हमें गाइड करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और ये जो प्रार्थना है हमें नित्य निरंतर करते रहना है, भगवान से ही मार्गदर्शन की हमें प्रेयर करनी है कि भगवान ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के भजन की तरफ चलते हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरोसे चलता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो शाम भरों से पलता हूँ, दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरों से चलता हूँ, भूल के सारी के सारी दुनियादारी, शाम का दामन थामा है, देख के इनकी रहमत भारी, खुद को सुदामा माना है, शाम शरण में श्याम शरण में स्वर्ग सा सुख है, ये सच मैंने जाना है, दुनिया चलती पैरों पर मैं श्याम भरों से चलता हूँ, ना घबराए ना घबराए दिल मेरा, अब शाम जो मेरे साथी है, संकट आए जब जब मुझ पर, चलता आगे आगे है, शाम के दर पे शाम के दर पे जाके देखो, सोई किस्मत जागे है, दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरों से चलता हूँ, सांसे तो बस सांसे तो बस एक वहम है, शाम के नाम से जीता हूँ, प्यास लगे जब थोड़ी थोड़ी, शाम की मस्ती पीता हूँ, निखिल ये बोले निखिल ये बोले अपना हर पल शाम भरों से जीता हूँ, दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरों से चलता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो शाम भरों से पलता हूँ, दुनिया चलती पैरों पर मैं शाम भरों से चलता हूँ, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बस हमें यही भरोसा बना के रखना है कि हम भगवान के ही भरोसे इस जिंदगी में आगे चल सकते हैं, और यहाँ से आगे चलकर हम भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये भरोसा हमेशा कायम रखना है कि भगवान ही हमारे सच्चे साथी और हमारे सच्चे मार्गदर्शक है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल,
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। धन्यवाद राकेश व्यास जी, आनंद आ गया। बड़े शुद्ध भाव के साथ आपने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी और इतनी मधुर वाणी में और दिल से आपने इस भजन को हमारे साथ साझा किया, और जो आज हमने गीता का सार समझा, जब भागवत गीता को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस भजन के माध्यम से आपने एक मैसेज भी हमें दिया कि भाई भरोसा अगर करना है तो शाम के ऊपर भरोसा करें, अपने पैरों के ऊपर और दुनियादारी के ऊपर हमने भरोसा करके देख लिया। और यही गोलोक एक्सप्रेस का और निखिल जी का भी एक प्रयत्न है कि हम शाम के ऊपर भरोसा करना हम सीख भी रहे हैं और सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
धन्यवाद करना चाहूंगा मैं यहाँ रीता जी का, जिन्होंने इतनी बढ़िया ब्यूटीफुल रीडिंग की, और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं ईशा सोनी जी का कि इतने बढ़िया थॉट्स उन्होंने हमारे बीच रखे और बहुत बढ़िया ब्यूटीफुली तरीके से उन्होंने रिव्यू भी कंडक्ट किए। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं सुनीता जी का, निधि जी का, कि जिन्होंने अपने भाव प्रकट किए और भागवत गीता को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश की और हमें समझाने की कोशिश की। स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा जितने भी व्यूअर, जितने भी डिवोटीज हमें इतने पेशेंस के साथ और ध्यान के साथ सुनते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देंगे और कल हम इसी समय 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे फिर ज्वाइन करेंगे और कुछ और चैप्टर 2 के सारांश से कुछ और नई गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे। तो अंत में एक बार फिर से मैं निखिल जी को उनके बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि उन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण।
गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस info@golokexpress.org द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर 7018026821 से भी जुड़ सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरी हरी बोल।